ओम शांति। पल पल परमात्मा की याद जिनके दिल में बसती है, पल पल परमात्मा की याद जिनके दिल में बसती है, जिनके चेहरे पर हर पल रूहानी मस्ती है, वह हस्ती शोभाबेन हमारे समक्ष उपस्थित है। उनके हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप 33 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, 32 साल से आप गोवा सब जोन की संचालिका है। अभी हम उनके द्वारा उनके अनुभव भरे बोल सुनेंगे। शोभाबेन जी,
ओम शांति। आज आप सभी विशेष प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए पधारे हुए हो, हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। जो कि दुनिया के अंदर जिस भगवान के दर्शन करने के लिए मनुष्य तरसता या उसके लिए बहुत सारी तपस्या कहो, उपवास कहो या बहुत कुछ जीवन के अंदर करता रहता है और ये लक्ष्य रखता है कि जीवन के अंदर कभी ना कभी भगवान मिलेंगे या कहें उनके दर्शन होंगे या उनके द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से दुनिया के अंदर लोगों ने त्याग किया कहो, तपस्या की कहो या जो भी व्रत वैकल्य वगैरह किए वो कहो, लेकिन बहुत सहज हम सबको वो भगवान या कहे पैरा बाबा जो है वो मिला हुआ है। और केवल मिला हुआ ही नहीं है, लेकिन हम सब प्रतिपल उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, हम उसके द्वारा हर पल जैसे कि उसके साथ का अनुभव कर रहे हैं, उसके द्वारा सब कुछ पा रहे हैं या कि हर पल हर कर्म के अंदर उसको साथी बनाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी बाबा से मिलने के लिए बाबा के बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उन सबको देख करके बहुत खुशी होती है और ऐसे ही अंदर से लगता कि जैसे बाबा कहते हैं कि वो है, ये मेरे वही बच्चे हैं, जो बच्चे कल पहले मेरे से आकर के मिले हुए थे और क्लब के बाद आकर के फिर से मिले हुए, ऐसे बहुत भाग्यशाली कहो या बहुत ही जैसे नजदीक के कहो ऐसे बच्चे हैं। और ऐसे बच्चों को देख करके जैसे बाबा को बहुत खुशी होती है, ऐसे हमें भी बहुत खुशी होती। और साथ साथ मुझे तो बाबा के शुरू शुरू के वो बोल जो कि हमारे दादियों के द्वारा हम सुनते हैं तो बोल याद आते। मुझे याद आता है कि जब 79 के अंदर हम पहले जब बाबा को मिलने के लिए यहाँ पर आए मधुबन के अंदर बाबा से मिलने के लिए आए हुए थे और हमारे पर दादी जी अर्थात ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी आप सब तो जानते हैं निर्मल शांत दादी जी, तो उन्होंने बहुत सुंदर जैसे कि एक बात जो है वो बताई हुई थी। जैसे अभी अभी बाबा ने एक साकार मूल्य के अंदर बताया था कि बच्चे ऐसे कुछ पहेलियां जो है वो लिखो कि जिन पहेलियों को सुन करके लोगों के अंदर कहो या बाबा के बच्चों के अंदर कहो उमंग निर्माण हो जाए। तो उसी प्रकार से ज्ञान युक्त ऐसी पहेलियां दादी जी सुनाते थे और उस समय दादी जैसे बाबा को मिलने के लिए ही आए थे और दादी से वो पहेली सुनी, जिस पहेली के अंदर जब ब्राह्मण परिवार से हम मिलते हैं या बाबा के बच्चों से जब मिलते, बच्चों को जब देखते हैं तो किस प्रकार की भावनाएं अंदर निर्माण हो जाती, तो वो भावनाएं उसके अंदर भरी हुई है जो कि आज भी याद आती। हो सकता है कि आप सबको भी वो मालूम होंगी, यहाँ पर अभी इस सीजन के अंदर फर्स्ट टाइम बाबा को मिल रहे हैं, वो थोड़ा हाथ, मतलब पहली बारी बाबा को मिलने के लिए आए हैं, वो हाथ ऊपर करना। अच्छा, फर्स्ट टाइम मिल रहे। तो दादी जी एक पहेली पूछा करते थे, और अभी भी जब दादी के पास जाते हैं तो दादी वही बहुत उमंग उत्साह से बच्चों को पूछती रहते हैं। तो दादी जी ने एक बार ऐसे ही प्रश्न पूछा था पहेली के रूप में। तो दादी ने कहा कि दो और दो चार मिले, दो और दो चार मिले, 64 खिले और 5 लाख खड़े हो गए, क्या? ये पहेली भी है और साथ साथ प्रश्न भी है। दो और दो चार मिले, 64 खिले और 5 लाख खड़े हो गए, क्या? हाँ बताओ। क्योंकि ब्राह्मण जब आपस में मिलते हैं तो ब्राह्मणों का मिलना बहुत अलग ढंग का होता। लौकिक दुनिया के अंदर जब मिलते हैं तो उनको उनके मिलने का जो भी तरीका होता है वो अलग होता, लेकिन ब्राह्मण जब मिलते हैं तो आपस में ब्राह्मण बातचीत भी अलग करते, उनका मिलना भी अलग होता, मुस्कुराना भी अलग होता है, व्यवहार भी अलग होता, और सब कुछ जैसे कि बाबा के ज्ञान के हिसाब से क्या करता, भावनाओं को प्रकट करता जाता है। तो दो और दो चार मिले, 64 खिले और 5 लाख खड़े हो गए, क्या? हाँ जी, ब्राह्मण मिले, और ब्राह्मण मिलते समय कैसे मिले, जवाब क्या? हाँ जी, 5000 बरस के बाद मिले, लेकिन दो और दो चार, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, और हम तीसरे हो गए ना, फिर चौथा कौन? हाँ जी, आत्मा। तो दादी जी बहुत प्यार से कहते थे, जब ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो ब्राह्मणों का मिलने का तरीका कौन सा होता है, ब्राह्मणों की दृष्टि या नजर कहाँ पर होती है, मस्तक में होती है, या कहे मिलते हैं तो एक दूसरे को दृष्टि के द्वारा मिलते हैं, और वो दृष्टि अर्थात हमारी दो आंखें और आपकी दो आंखें जब आपस में मिल जाती है तो कितनी हो जाती, चार हो जाती है, और जब चार आंखें मिल जाती, खुशी हो जाती है, तो उस खुशी के आधार पर क्या हो जाता, 64 खिल जाते हैं। तो 64 खिले माना दांत, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मुख में 32-32 दांत होते हैं, तो 64 हो सकता है कि सबके मुख में 32 न भी हो, क्योंकि हमारे भी नहीं है। तो 64 अर्थात जैसे कि मुख कमल जो है वो खिल जाता, अर्थात बहुत खुशी अंदर से हो जाती, और उसके बाद क्या हो जाता, 5 लाख खड़े हो गए, माना रोमांच, जो कि 2.5 लाख रोमांच एक व्यक्ति के शरीर पर होते हैं और दूसरे व्यक्ति के मिलकर के 5 लाख, माना ब्राह्मणों का जब आपस में मिलना होता है या ब्राह्मणों को जब मिलते हैं तो बहुत खुशी हो जाती, और इसलिए खुशी हो जाती है कि बाबा ने हर ब्राह्मण के प्रति ये बताया हुआ है कि ये जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो साधारण बच्चे नहीं है, लेकिन कल पहले वाले वो देवी आत्माएं हैं या देवताएं हैं, लेकिन इस रूप के अंदर, इस कलप के अंदर जो भी मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, साधारण रूप में है, लेकिन उनके अंदर छिपी हुई जो आत्मा है वो बहुत ऊंची है या बहुत महान है या बहुत दैवी है। तो ये जो बाबा ने हमें स्मृति दी हुई है उस स्मृति के आधार पर जब हम मिलते हैं तो अंदर से बहुत खुशी हो जाती है कि ऐसी आत्माओं को हम मिले हुए हैं जो कि पूरे 5000 साल तक कहाँ न कहाँ पर इस ड्रामा के अंदर हम पार्ट बजाते या कहे कहाँ न कहाँ पर मिलते हुए हम सभी आए हुए हैं और अभी भी इस कलप के अंदर इस कलप के अंत में आकर के क्या हो गए हैं, मिले हुए हैं। और जब इस धरती पर आते हैं, धरनी पर आते हैं, तो ये धरनी भी हम सबको उसी ऊंचाई की या उसी महानता की जैसे कि अनुभूति कराती है मधुवन की धरनी या शांतिवन की धरनी, जहाँ पर स्वयं बाप दादा आते हैं और आकर के बच्चों से मिलते हैं, कहो भरपूर करते हैं कहो, तो वो भी जैसे कि बहुत उस धरनी का भी महत्व और उस धरनी पर आने वाले सभी भाई बहनों का भी महत्व जो है वो महत्व बढ़ जाता। ऐसी ही एक बात मुझे याद आती है इस भारत भूमि की, जिसके अंदर एक बारी बताया जाता कि कैसे ही विदेशी भारत के अंदर आ रहा था और जब यहाँ पर वो आ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी हुई थी कि भारत क्या है, भारत भगवान की जन्मभूमि है या कि भगवान वहां पर आते हैं और इतने सारे भगवान जो है वो भारत के अंदर है जो कि विदेश के अंदर उस भगवान को कहाँ कहाँ पर मानना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इतने भगवान यहाँ पर है, मतलब भगवान के प्रति है, धरनी के प्रति बहुत उनके अंदर भावनाएं जैसे भरी हुई थी और उन्हीं भावनाओं को लेकर के जब वो यहाँ पर आए, इंडिया के अंदर आए, तो जैसे ही उनका विदेश से जो आया हुआ प्लेन था वो प्लेन इंडिया के अंदर जब लैंड हो रहा था तो जब धरती पर वो आया और आकर के जैसे ही रुका तो उस समय वो जो विदेशी था, वो विदेशी सभी उनके साथ आए हुए लोग जो है वो उतर रहे थे और जैसे ही वो विदेशी जो है वो उतर रहा था तो उसको उतर जैसे स्टेप्स उतर रहा था लेकिन धरनी पर उनके पांव जो है वो पड़े हुए नहीं थे। तो उस समय जैसे वो नजदीक आया और लास्ट स्टेप जहां पर थी तो वहां पर आकर के सबसे पहले उसने क्या किया होगा, तो उसने अपने बूट, अपने शूज जो है वो उसने उतारे और अपने हाथ में लिए और अपना फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट कदम जो है वो धरती पर रखा। और जैसे ही धरती पर रखा तो वैसे एक व्यक्ति जो है वो वहां पर सिक्योरिटी का था, वो जैसे दौड़ते वहां पर आया और आकर के उनको कहा कि आपने शूज क्यों उतारे, यहाँ पर शूज उतारो नहीं, आप शूज पहन करके चलो। तो उस समय उसने कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि भारत भगवान की जन्मभूमि है, भारत भगवान का प्लेस है और उस भूमि पर मैं यदि शूज डाल करके कदम रखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका अपमान हो जाएगा उस धरनी का। इसलिए उसने कहा कि मैं फर्स्ट स्टेप वहां पर रख रहा हूँ, पहला कदम यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, तो मैं शूज पहन कर नहीं लेकिन उसको निकाल कर मैं यहाँ पर फर्स्ट कदम जो है वो रखूंगा और उसके बाद उसने शूज पहने। लेकिन उसके अंदर ये भावना थी कि ये जो धरनी है, ये जो प्लेस है वो किसका प्लेस है, भगवान का प्लेस है, या कहीं भारत इतनी महान भूमि है या इतनी दैवी भूमि है जहाँ पर कदम रखना भी, विदेशी भी कदम रखना जो है वैसे समझते हैं कि यहाँ पर ऐसे मना जूते पहन करके नहीं कदम रखना चाहिए। तब देखो कि इस धरनी के प्रति, मना पूरे ही भारत के प्रति जो भावना है वो भावना मनुष्यों के अंदर कितनी ऊंची है। और जहाँ पर हम सब बैठे हैं, तो वो तो और भी ऊंचा प्लेस कहेंगे या और भी ऊंचा स्थान है जहाँ पर स्वयं भगवान यहाँ आते हैं या स्वयं भगवान जहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसा स्थान माना जिसको बाबा कहते हैं कि इतनी इसके अंदर, इसके यहाँ के रग रग के अंदर कहो, कण कण के अंदर कहो, वो वाइब्रेशन या कहे वो शक्ति जो है वो यहाँ पर भरी हुई है, और वही शक्ति हमें पुरुषार्थ के अंदर बहुत मदद करती है। इससे बाबा कभी कभी मुरलियों के अंदर बताते हैं कि बच्चे जहाँ पर आप सभी रहते हो वहाँ पर पुरुषार्थ जो भी करते हो वो वहाँ पर समझो आप एक साल से पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन मधुबन के अंदर जब आप आते हो और चार दिन या पांच दिन भी यहाँ रहते हो तो एक साल का वहाँ पर किया हुआ पुरुषार्थ और यहाँ पर चार पांच दिन किया हुआ पुरुषार्थ कैसे हो जाएगा? हाँ, इक्वल हो जाए। माना यहाँ की जो भी चार पांच दिन की भी कमाई है वो कमाई इतनी आप कमाई अपनी कर सकेंगे जो कि कमाई बाबा कहते हैं अगले दो साल भी कहो एक साल भी कहो वो कमाई जो है वो आपके साथ क्या होती रहेंगी, चलती रहेंगी। माना इतना यहाँ पर हर पल जैसे कि बच्चों को मिलता रहता है, चाहे बाबा का प्यार कहो वो भी मिलता है, दादियों का स्नेह कहो वो भी मिलता है, और शक्तिशाली भोजन कहो जो कि आत्मा को भी बहुत शक्तिशाली भोजन मिलता, और साथ साथ बड़े भाई बहनों के द्वारा या दादियों के द्वारा जो भी सुनने के लिए मिलता है वो भी बहुत शक्तिशाली पुरुषार्थ के लिए जैसे मिलता रहता है। जब भी दादियों से मिलते हैं तो भी उनके द्वारा इतना मिलता है, जो हम अभी अभी दादी से मिल रहे थे तो दादी को एक प्रश्न पूछा था जो कुछ समय पहले बाबा ने कहा था कि बच्चे ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या को फॉलो करो। तो कई बार हम सुनते हैं कि जो भी दिनचर्या बाबा की थी वो दादियों के द्वारा तो सुनते हैं कि कैसे दिनचर्या बाबा की थी, जिसके अंदर हम सब तो यही सुनते हैं कि बाबा 2 बजे उठते थे और 2 बजे उठ करके बाबा का पुरुषार्थ जो है वो 2 बजे से लेकर के चलता था। लेकिन जब पुरुषार्थ 2 बजे से चलता था ये तो सुनते, लेकिन बाकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जो भी सुना हुआ है उसके अंदर यही सुनते हैं कि बाबा किस प्रकार से मिलते थे, किस प्रकार से बाबा हर व्यक्ति को जैसे भरपूर करते थे, जो भी बाबा के सामने आता था उसको कैसे भरपूर करते थे, ये सारी बातें जो है वो हम सुनते थे। लेकिन मुझे अंदर से ऐसे लगता था कि बाबा की पूरी दिनचर्या जो है वो दिनचर्या कैसी थी और कैसी होगी ये हम दादियों के द्वारा सुने। तो जब दादी को ये प्रश्न पूछा तो 5-6 दिन पहले ही तो दादी जी ने कहा कि बाबा हर एक कर्म जो करते थे वो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, माना हर कर्म जो बाबा का होता था वो कैसे होता था, बाबा की याद में होता था। हम तो 4 बजे से या 3:30 बजे से जो भी दिनचर्या बनाते हैं वो हमारी दिनचर्या अपनी अलग होती है, वो दिनचर्या बाबा ने ही दी हुई है और उसी दिनचर्या के अनुसार चलते। लेकिन जब दादी ने कहा कि एक जैसे थोड़े से शब्दों के अंदर दादी ने कहा कि बाबा हर कर्म जो करते थे वो शिव बाबा की याद में करते थे, माना पूरी दिनचर्या जो है वो हमें अपने आप को बाबा की याद दिलानी पड़ती है, या कहे दिनचर्या के अंदर हम अलग अलग रीति से जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल है, या कहे अभी बाबा ने जो अभ्यास दिया हुआ है कि हर घंटे के बाद 1 मिनट बाबा को याद करो तो वो याद है। तो इस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या के अंदर ऐड करते या जो भी नया नया पुरुषार्थ बाबा देते हैं उस पुरुषार्थ को ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे दादी ने कहा कि बाबा ऐसे याद करते थे जो कि बाबा के दिनचर्या के अंदर 1 सेकंड भी शिव बाबा से अलग रहना नहीं होता था, माना 1 सेकंड भी बाबा को शिव बाबा भूलते नहीं थे, लेकिन हर पल जैसे कि क्या होते थे, याद रहते थे। बाकी जो दिनचर्या को फॉलो करने की बात है तो उस पर हम कुछ भाई बहने जो है वो मिल करके हम लोगों ने ऐसे चिंतन किया और उस चिंतन के अंदर जो निकला उसमें से यही निकला कि जैसे बाबा की दिनचर्या 2 बजे से शुरू होती थी तो रात तक बाबा के हर कर्म के अंदर जैसे हर कर्म जो है वो बाबा का एक्यूरेट होता था, माना कोई भी कर्म इधर उधर नहीं होता था। जिसमें 2 बजे बाबा उठते थे तो उस समय बाबा का ये लक्ष्य रहता था कि जैसे बाबा उस समय लिखते थे, मुरली लिखते थे बाबा की, और शिव बाबा की मुरली जितनी ही पेज होती थी उतना बाबा लिखते जाते थे और वही मुरली जो है वो जैसे कि बाद में सुनाई जाती थी, या बाबा भी जब क्लास करते थे तो उस समय भी बाबा की याद के अंदर, शिव बाबा की याद के अंदर वो भी चलता था। या जैसे हमने दिनचर्या के अंदर सुना हुआ था कि बाबा 11 बजे जैसे दादी यशु दादी को लेकर के बैठते थे और यशु दादी के द्वारा जितने भी लेटर्स आते थे तो उन लेटर्स को बाबा सुनते थे, पढ़ते थे और सभी का जवाब जो है वो जवाब बाबा देते थे। माना हर प्रकार से जैसे कि दादियों के द्वारा या बड़ी बहनों के द्वारा जो जो दिनचर्या मिली हुई थी तो उस अनुसार हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना हम सबके लिए कितना आवश्यक है। और उसके साथ साथ जैसे कि बहुत उसका नजदीक से अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है ऐसे लगा, क्योंकि बाबा के जीवन के अंदर तो एक पल भी शिव बाबा को भूलना नहीं होता था। और हम जैसे बीच बीच में बाबा हम सबको याद दिलाते हैं कि बच्चे बीच बीच में अपने आप को भी याद दिलाओ कि शिव बाबा याद है। तो जैसे कि अंदर से आता है कि बीच बीच में हम भी क्या हो जाते बाबा को भूल जाते हैं, और वो भूलना जो है वो हमारा न हो उसके लिए बाबा की दिनचर्या बहुत हमें मदद करती है। जैसे यहाँ की दिनचर्या तो हम सबको मिली ही हुई है और उस दिनचर्या के अनुसार हम सभी पुरुषार्थ करते रहते हैं तो वो भी पुरुषार्थ हमारे जीवन के अंदर बहुत हमें आगे बढ़ाने के लिए जैसे निमित्त बन जाता। अभी भी बाबा ने विशेष पिछले सीजन के अंदर खास करके हम सबका अटेंशन खिंचवाया 2 बातों के ऊपर, और वो जो 2 बातें जिसके अंदर एक तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया था संकल्प के ऊपर और दूसरा अटेंशन खिंचवाया था समय के ऊपर। समय को सफल करो या समय को जहां तक हो सके वहां तक समय को बहुत अच्छी तरह से जैसे बाबा की याद के अंदर सफल करो, और दूसरा व्यर्थ संकल्प के ऊपर कंट्रोल करो या व्यर्थ की लीकेज जो भी है उस लीकेज को खत्म करो। तो हम सभी ये देख रहे हैं कि जब व्यर्थ पूरा पूरा खत्म हो जाता है या व्यर्थ जब पूरा ही बाबा कहते खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि एक भी व्यर्थ यदि नहीं बचेगा या पूरा ही जैसे कि व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो ये धरनी भी क्या बन जाएगी। क्या बन जाएंगी? स्वर्ग बन जाएंगे। अभी तो स्वर्ग है ही नहीं, जो भी बाहर के लोग आते हैं तो स्वर्ग का अनुभव तो अभी भी करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा था कि ये धरनी भी जादुई नगरी बन जाएंगी, जो कि यहाँ पर जो भी आएगा उस जादुई नगरी का कहो या उस जादू का अनुभव करेगा। तो जैसे यहाँ पर आते हैं तो हम सब तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते हैं कि ये तो है ही जादुई नगरी, या यहाँ पर जब आते हैं तो सारा ही व्यर्थ खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो भी बाबा की बातें हैं या जो भी पुरुषार्थ की बातें हैं वो सब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से चलती है और बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा देती, लेकिन जब अपने अपने स्थानों पर जाते हैं तो वहां पर और भी कुछ दिखाई देता या और भी कुछ सामने आ जाता है, तो तो वहां पर थोड़ा बहुत कहां पर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, लेकिन वो भी व्यर्थ बाबा कहते खत्म करना है। और उस व्यर्थ को खत्म करने के लिए जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि आप जिस धरनी पर अभी आए हुए हो तो उस धरनी पर बीच बीच में मन से भी क्या करो, पहुंचो। जैसे बाबा ने एक बारी कहा था कि बच्चे जब कभी मन मूंज जाता है, जब कभी व्यर्थ संकल्प चलता है, या जब कभी मन के अंदर कोई भी समस्या के कारण कोई भी तनाव आ जाता है, तो उस समय बाबा ने कहा था कि आप जहां पर भी होंगे वहां से एक सेकंड के लिए मधुबन के अंदर पहुंचो। जब एक सेकंड भी मधुबन के अंदर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां का जो वातावरण है, वहां की जो शक्ति है, वो शक्ति सारे ही व्यर्थ को या सारे ही टेंशन को क्या कर देंगे, सेकंड के अंदर खत्म कर देंगे। तो अपने दिनचर्या के अंदर भी जब हम ये जोड़ देते हैं कि बीच बीच में जैसे बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन के अंदर आ जाओ, परम धाम के अंदर आ जाओ, वैसे मधुबन के अंदर भी बीच बीच में आकर के कभी बाबा के कमरे में आकर बैठ जाते, या कभी मधुबन के अंदर शांति स्तंभ के पास खड़े हो जाते, या यहाँ पर कभी प्रकाश स्तंभ के पास आकर के योग करते हैं मन से, तो भी क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ के अंदर एक बहुत अच्छी नवीनता भी आ जाएंगी और साथ साथ मन भी उस समय उन संकल्पों को ब्रेक लगाना, व्यर्थ को खत्म करना उस समय के लिए भी क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ऐसे मन को अभ्यास जो है वो अभ्यास देना, और हम भी अपने जीवन के अंदर यही करते हैं। हम भी जब ऐसे कभी कोई बात आती, समस्या आती है, तो हमने भी देखा कि जब मधुबन से हम वहां से हम यहाँ मधुबन के अंदर पहुंच जाते, खास करके हम ये अनुभव करते हैं कि बाबा के कमरे के अंदर जब पहुंच जाते हैं और बाबा के सामने जब बैठ जाते हैं, तो सारी ही समस्या कहो या सारी ही बात कहो एक सेकंड के अंदर जैसे कि खत्म हो जाती। ऐसे लगता है कि बाबा अभी सामने है और अभी ही सामने हमें क्या कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। और उस समय कुछ भी हो अंदर, तो उस समय जैसे कि अंदर से रिलैक्स होने का अभ्यास जो है वो अभ्यास करते हैं। तो जैसे बाबा की दिनचर्या के बारे में आपको बताया, उसी प्रकार से ऐसे रात को 2 बजे से लेकर के एक एक बात जो है वो बाबा की ऐड करते जाते हैं नवीन, तो वो पुरुषार्थ के अंदर बहुत अच्छी तरह से मदद करती है और आगे भी बढ़ाती जाती है। ऐसे जब हम दादियों के पास आते हैं, यहाँ पर भी आप सभी आए हो अभी, तो दादियों से मिलना होता है, या कहे जैसे कि हम बाबा के कमरे में जाते हैं या क्लासेस सुनते हैं, तो ये भी एक प्रकार से बहुत सारा मटेरियल हमें पुरुषार्थ के लिए नया मिलता है। और ये भी मटेरियल जो है वो जैसे कि हम बीच बीच में यूज करते जाते हैं, तो जैसे अंदर से वो ताकत हमारे अंदर आती जाती है, और वही ताकत बाबा कहते हैं कि औरों को भी क्या करेगी, बहुत सारी मदद जो है वो करेगी, और औरों का भी व्यर्थ जो है वो खत्म करेंगी। अभी अभी की बात है जो कि आजकल हम देख रहे हैं, अभी दिसंबर मास जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें जो है वो सुनाई दे रही है। तो एक बारी ऐसी ही अभी अभी एक भाई सामने आया था और उसने हमें पूछा कि अभी 2012 जो है वो खत्म होने पर है और 2013 अभी शुरू हो जाएगा, तो दिसंबर मास के अंदर जो कैलेंडर अभी माया कैलेंडर जैसे कि बंद होने वाला है कहा, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, ये कैलेंडर जब खत्म हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा। जो भी भविष्यवाणियां अभी बताई जा रही है, तो उन भविष्यवाणियों के आधार पर आपके विद्यालय के द्वारा कहो या आपके द्वारा आपका विचार जो है वो क्या है, आगे क्या होगा, आगे विनाश होगा, या सचमुच ही जो भी भविष्यवाणियां बताई हुई है उस प्रकार से होगा। तो जैसे हमने ये प्रश्न उनके द्वारा सुना, तो हमें भी ऐसे लगा कि देखो बाबा के बच्चे जो है वो बाबा के बच्चे एकदम कैसे है, विनाश के बारे में कहो या सारी दुनिया की हलचल के बारे में कहो, बाबा के बच्चे जो है वो कैसे है, बेफिकर है, निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत है। लेकिन बाहर देखे तो दुनिया के अंदर क्या है, बहुत सारी चिंता है या बहुत सारा टेंशन है या बहुत सारे जैसे कि मन के अंदर क्वेश्चन मार्क है। तो जब उन्होंने कहा तो हमने कहा कि आपको ऐसे क्यों लगा कि यहाँ पर आकर के पूछना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि बहन जी आजकल हम देखें तो ब्रह्म कुमारी विद्यालय के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान ऐसे ज्ञान है जो कि मन को बहुत शक्ति देता है, अंदर से बहुत इसे शक्ति आती है। और हमें भी ऐसे लगा कि आप लोगों को तो मालूम होगा कि ऐसे ऐसे भविष्य है, ऐसे ऐसे परिवर्तन होने वाला है, लेकिन इसके बारे में आपका विद्यालय क्या कहता है ये हम सुनना चाहते हैं। तो हमने कहा हमारा विद्यालय जो है वो ये कहता है कि अभी आने वाली दुनिया जो है वो टेंशन मुक्त होगी, आने वाली दुनिया जो है वो स्वर्ग होगा, आने वाली दुनिया जो है वो निश्चिंत दुनिया होगी, या आने वाली दुनिया जो है वो बहुत अच्छी होगी, इसलिए आप चिंता नहीं करो, इसलिए आप उस बारे में सोचो नहीं, लेकिन अभी जहां पर भी आप हो तो उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दो। मतलब आप जहां पर भी अभी हो वहां पर सोचो, क्योंकि अभी मनुष्य का दुनिया के अंदर क्या हो गया है, जैसे मनुष्य जी रहा है या तो पास्ट में जी रहा है या तो फ्यूचर में जी रहा है एक्चुअली वो वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट के अंदर है, लेकिन प्रेजेंट में होते हुए भी वो पास्ट का चिंतन कर रहा है और फ्यूचर की चिंता कर रहा है, जिस कारण वर्तमान के अंदर जो उसको लाभ लेना है, मजा लेना है, वो मजा तो नहीं ले रहा, लेकिन कहां न कहां देखे तो वो अपना टाइम क्या कर रहा, वेस्ट कर रहा है। वो अपने अंदर जो चिंता नहीं होनी चाहिए उस चिंता को वो बढ़ा रहा है। और जब उसको ये उनको ये बताया कि विद्यालय के अंदर हमारे ये ज्ञान दिया जाता है कि आप वर्तमान के अंदर रहो, पास्ट इज पास्ट करो और भविष्य के लिए, तो ऑटोमेटिक भविष्य क्या हो जाएगा, उज्जवल बन जाएगा। तो जब ये उनको सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत पावर चाहिए, जो यहाँ पर आपके पास तो है लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है जो कि हम वर्तमान के अंदर जिए और भविष्य की चिंता करना छोड़ दे। लेकिन बाबा के बच्चों को देखा जाए तो बाबा के बच्चों को बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है जो हर प्रकार से बच्चों को क्या करता है, पास्ट के लिए भी निश्चिंत कर देता है, क्योंकि पास्ट को भी बाबा कहते वर्तमान योग के आधार पर या कहे सही कर्म के आधार पर आप पास्ट को भी बहुत अच्छी तरह से हल्का कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से उसको भी आप भूल सकते हो, और वर्तमान के अंदर रह करके जब अच्छा कर्म यहाँ पर करते हो या बाबा के साथ जुड़े रहते हो, बाबा के साथ बुद्धि का योग रहता है, तो उसके आधार पर आपका वर्तमान तो ठीक हो जाता लेकिन भविष्य के लिए भी क्या हो जाता, जमा हो जाता है, या भविष्य भी आपका निश्चिंत हो जाता है, हर प्रकार की चिंता जो है वो क्या हो जाती, मिट जाती है। माना बाबा के ज्ञान ने हर प्रकार से आत्मा को क्या कर दिया है, एकदम निश्चिंत कर दिया है। माना सारी दुनिया तो चिंता में है लेकिन बच्चों को निश्चिंत कर दिया, लेकिन अभी बाबा हम बच्चों के प्रति देखे तो बाबा हम बच्चों के प्रति क्या चाहते, कि मेरे बच्चे जो है वो क्या करे, ऐसे ही निश्चिंत रहे ऐसे चाहते, या और कुछ करे ऐसे चाहते, क्या चाहते, कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही निश्चिंत रहे ऐसे ही चलते रहे, पास विथ ऑनर बने। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो अभी आगे जो भी दुनिया वाले हैं या जो भी दुनिया के मनुष्य हैं, उन मनुष्य आत्माओं को शक्ति देने वाले, उनके ऊपर रहम करने वाले, या उनको भी ऐसे अपने पैरों पर खड़ा कर दे जो कि उनकी भी चिंताएं जो है वो क्या हो जाए, मिट जाए। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा रहम दिल जो है वो बाबा कहते बच्चे कोई भी नहीं होगा जो आप बच्चे हो। केवल आप बच्चे ही दुनिया के लिए सोच सकते हो, केवल आप बच्चे ही दुनिया के लिए शुभ भावना शुभ कामना रख सकते हो, केवल आप बच्चे ही बाबा कहते हैं कि अनेकों का कल्याण जो है वो कल्याण कर सकते हो। क्योंकि कोई भी मन के अंदर अनेक कोई भी आत्मा के प्रति कोई भावना जो है वो ज्ञानी तो आत्मा के अंदर कोई ऐसी वैसी भावना जो है वो नहीं रहेगी, लेकिन हर व्यक्ति के प्रति जो भी हमारी भावना उत्पन्न हो जाएंगी, बाबा के बच्चों की जो भावना होगी वो भावना कैसी होगी, होगी तो शुभ भावना होगी, होगी तो कल्याण की भावना होगी, या होगी तो बाबा कहते हैं रहम की भावना होगी। माना जो दुनिया के अंदर मनुष्य आत्माएं भावनाएं रखती है वैसे भावनाएं अभी नहीं है, पहले थी लेकिन अभी वो भावनाएं जो है वो अभी खत्म हो गई है, और सारी भावनाएं जो है वो बाबा के बच्चों की भावनाएं बहुत ऊंची और बहुत अनेक आत्माओं के प्रति कल्याण की भावनाएं जो है वो अभी निर्माण हो गई है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे साथ साथ अभी आप बच्चे भी क्या करो, सारी दुनिया को सकाश देने के लिए या सारी दुनिया को रहम करने, दुनिया के ऊपर रहम करने के लिए खड़े हो जाओ। अर्थात ऐसे शक्तिशाली बाबा कहते हैं कि अपने आप को बनाओ, जो अंदर कोई भी दुर्भावना जो है वो तो नहीं रहे, लेकिन अनेकों की भावनाएं जो है वो दुर्भावनाएं क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और ये वातावरण जो है, ये वातावरण आजकल हम देख रहे हैं कि चारों तरफ उस प्रकार का वातावरण जो है वो बहुत अच्छी तरह से फैलता जा रहा है। बाहर से लोगों के अंदर जो भी हमारे प्रति जो भावनाएं है वो भावनाएं बहुत ऊंची है, या वो भावनाएं जो है बहुत कल्याण की है, जो उनको लगता है कि यदि कुछ दुनिया के अंदर कर सकते हैं तो ये बाबा के बच्चे कर सकते हैं, या ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियां कर सकती है, और किसी के अंदर ये ताकत नहीं है। माने जैसे बाबा कहते हैं कि जितना ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रसिद्ध होनी चाहिए थी वो भी उतनी हो गई है, सब तरफ हो गई है, हर प्रकार से हो गई है। हम लोग जब भी सेवा के लिए जाते हैं गोवा के अंदर, तो जहां पर भी हम जाते हैं तो वहां पर एक समय ऐसा था जहां पर कदम रखा तो उस समय सेवा के लिए बहुत मुश्किल होती थी, बहुत मना ज्ञान क्या सुनाया जाए या कहे कैसे यहां पर कदम रखे, ये भी एक समय था जबकि बहुत मुश्किल था। लेकिन आज हम देखते हैं कि कहां पर भी जाते हैं तो सामने से लोग क्या करते हैं, हमें बुलाते हैं, या कहे उनको लगता वो हर अपने प्रोग्राम के अंदर हमें शामिल करना चाहते, ब्रह्मा कुमारियों को शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हर मना विभाग के अंदर कहो, प्रभाग के अंदर कहो, या हर बात के अंदर कहो, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान जो है वो ज्ञान ही क्या करेगा, मदद करेगा। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे यूथ हो, या कोई भी हो सेक्शन, लेकिन हर बात के अंदर ये ज्ञान जो है वो बहुत यूजफुल है। और अभी बताते हैं क्या आप इस ज्ञान को यहाँ पर शामिल कर दो, या आप यहाँ पर इनका लेक्चर रख दो। मना हर प्रकार से आज बाबा जो है वो बाबा का ज्ञान चारों तरफ जैसे कि बहुत अच्छी तरह से फैला हुआ है, बहुत अच्छी तरह से जैसे बाबा का मीडिया के द्वारा भी ज्ञान फैला हुआ है। अभी केवल बाकी है, तो क्या बाकी है, बाकी रहा हुआ जो है वो है हमारा अपना स्वरूप, हमारा अपना ऐसे जीवन तो हमारा बहुत ऊंचा है और ऊंचा बन गया है। लेकिन अभी जो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने चलन और चेहरे के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता करो, या आपको देख करके बाबा की स्मृति सबको आ जाए, या कहे आपका अपना स्वरूप जो है वो ऐसा बने जिस स्वरूप को देख करके उनको उनका भी क्या हो जाए, उनको बाबा की तरफ आकर्षण हो जाए, तो वो स्वरूप जो है वो स्वरूप बनाना अभी हमारा बाकी है। और इसलिए बाबा भी हम सबको बार बार यही इशारा दे रहे हैं कि बच्चे जिस स्वरूप के अंदर आप थे उस स्वरूप का बार बार आप भी क्या करो, चक्कर लगाओ, आप भी उसका चिंतन करो, आप भी उसके अंदर बार बार जा करके आओ। इससे बाबा भी हम सबको चक्कर लगाते हैं, हम तो चक्कर लगाते लेकिन बाबा भी चक्कर लगाते हैं, या बाबा भी वो अभ्यास कराते हैं, या बाबा भी अभी चाहते हैं कि बच्चे जिस जिस स्वरूप के अंदर अपना चक्कर लगाते हैं वहां वहां पर बच्चे थोड़े समय के लिए क्या हो जाए, ठहर जाए। हाँ, जैसे पांच स्वरूपों का बाबा ने अभ्यास किया है तो वो अभ्यास हम सब करते हैं, लेकिन अभी बाबा चाहते हैं कि बच्चे वहां पर थोड़े समय के लिए क्या हो जाए, उस अभ्यास के अंदर स्थित हो जाए या वहां पर ठहर जाए, वहां पर ठहर करके उस रूप में उस युग में अपने आप को उस प्रकार से अनुभव करते जाए। तो जब उससे अनुभव करते हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक औरों को भी उसका साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। अभी हमने ऐसे अभ्यास किया हुआ था, एक बार योग भट्टी रखी हुई थी और योग भट्टी के अंदर ये पांच स्वरूप जो बाबा ने दिए हुए हैं वो पांच स्वरूप सबको कॉमेंट्री के द्वारा योग करा रहे थे। और उस स्वरूप के अंदर जैसे हम सतयुग में गए हैं तो एक होता है कि केवल यहाँ बैठे बैठे मन से वहां पर क्या करना, जाना, और जैसे दृष्टि में दृश्य जो है वो दृश्य खड़ा करना या कहीं दृश्य आना, जिसके अंदर थोड़ा सा इधर उधर तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे वहां पर अभ्यास कराया था कि वहां पर उस युग के अंदर कुछ समय के लिए हम ठहर जाए। जैसे बाबा कहते यहां से परम धाम में जाओ, परम धाम, परम धाम एक सेकंड के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर ठहरना कितना होता है, कईयों का बहुत ज्यादा होता, कईयों का बहुत कम हो जाता है, माना टच करके आ जाते हैं। बाबा ने बीच में कहा था कि आप टच करके आ जाओ, तो ऐसे टच करके हम आ जाते हैं, सेकंड के अंदर टच करके वहां पर आ जाते। लेकिन अभी केवल टच करने की बात नहीं है, अभी बात है समय के अनुसार, अभी बात जो है वो केवल टच करने की नहीं लेकिन वहां पर ठहरने की, वहां पर मन बुद्धि को रखने की, या वहां पर उस बात के अंदर वहां पर वो अनुभव करने की। जैसे सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण थे तो वहां पर जाकर के उसी चोले के अंदर अपने आप को महसूस करने की, वहां पर प्रवेश करने की, और प्रवेश करके वहां पर उस चीज की अनुभूति करने की, ये जरूरी है अभी। और उस प्रकार से वहां पर ठहरना, उस प्रकार से वहां पर रुकना, ये अभ्यास जो है वो कुछ समय के लिए हम करते थे। ऐसे ही जब पूज्य स्वरूप के अंदर आ जाते तैसे ही कॉमेंट्री करते समय ये बताया गया कि आप मंदिर में जाओ, और आज तक जिस मंदिर के अंदर जैसे हम मंदिरों का चक्कर लगाते हैं और पूज्य स्वरूप को भी सामने लाते हैं, लेकिन समझो हनुमान का मंदिर है या राम का मंदिर है या लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, तो उस मंदिर को भी अपनी दृष्टि के सामने ला करके उस मंदिर के अंदर साक्षात आप वहां पर उस मूर्ति की जगह जाकर के खड़े हो जाओ। कैसे खड़े हो जाओ, मन बुद्धि के द्वारा ही, लेकिन वहां पर ऐसे खड़े हो जाओ जो अनुभव करो कि बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है भक्तों की, और मैं वहां पर खड़ी हूँ और वहां पर खड़ी होकर के सारे भक्तों को क्या कर रही हूँ, सारे भक्तों के दुख हरण कर रही हूँ, सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ, या सारे भक्तों को बाबा के द्वारा जो मुझे मिला हुआ है वो सब कुछ मैं क्या कर रही हूँ, दे रही हूँ। तो वहां पर खड़े हो जाओ, वहां पर रुक जाओ, और कितना समय तक रुकते हो उसका अभ्यास करो, और उस अभ्यास को धीरे धीरे क्या करो, बढ़ाते जाओ। हाँ, क्योंकि ये अभ्यास पड़ता जाएगा तो एटोमेटिक वो स्वरूप जो है वो हमारा बनता जाएगा, और वो स्वरूप जब बनता जाएगा तो जो भी आत्मा के अंदर अब तक वीकनेस है या जो भी आत्मा के अंदर अभी तक कमियां है वो कमियां क्या हो जाएंगी, निकलती जाएंगी। हाँ, जिसको बार बार बाबा कहते हैं कि आप सभी बच्चे, हाँ, जैसे आज भी बाबा ने कहा मीठा बनना है, या कहे इन दिनों के अंदर, कल भी बाबा ने कहा था, इन दिनों के अंदर बाबा रोज रोज कहते हैं कि बहुत मधुर बोल होने चाहिए, बहुत मीठा व्यवहार होना चाहिए, बहुत मीठी दृष्टि वृत्ति होनी चाहिए। ये जो बाबा बार बार कहते हैं तो ये सारा एटोमेटिक क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्योंकि अभी केवल हम चक्कर लगा रहे हैं उस स्वरूप के अंदर, लेकिन वहां वहां पर जा करके ठहर जाएंगे तो ठहरने के बाद वो सारा ही हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाएगा, और वो जब आएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा जो बाबा स्वरूप, बाबा कहते हैं चेंज होना चाहिए, बोल चेंज होने चाहिए, या कहीं जो भी चेंज बाबा चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक ब्राह्मणों के अंदर भी अभी बहुत वैसे देखा जाए तो है, लेकिन और भी क्या हो जाएगा, वो दिव्यता आ जाएंगी। और थोड़ा बहुत भी कहाँ कहाँ वीकनेस आती या थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ फिसल जाते हैं वो भी क्या हो जाएगा, एकदम जैसे कि अंदर से खत्म हो जाएगा, और वो शक्ति, वो दिव्यता की शक्ति जो है, वो स्वरूप की शक्ति जो है, वो आत्मा के अंदर जैसे इमर्ज हो जाएंगी। तो जैसे बाबा ने अभ्यास किया हुआ है तो ये अभ्यास भी यहाँ पर तो बहुत अच्छी तरह से हम सबका होगा, अब होता है अपने अपने स्थानों पर भी होता है, लेकिन अभी वहां पर ठहरना ये जो है, ये अभ्यास हम अभी शुरू करें कि वहां पर ठहर जाए। ऐसी बाबा ने कहा है कि फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन फुल स्टॉप जो है वो कैसे, एक सेकंड के अंदर लगाओ, अभी भी लगता है लेकिन फिर से क्या हो जाता, लगता भी है स्टार्ट भी हो जाता, स्टॉप भी हो जाता और स्टार्ट भी हो जाता है, दोनों भी लग जाता है। तो उसको भी धीरे धीरे जो है वैसे अनुभव करे कि स्टॉप मना स्टॉप, जो बाबा कहते हैं अभी आगे जब आप पढ़ रहे हो या दिन जब आगे बढ़ता है तो पिछला दिन आगे कभी भी नहीं आता, अगला दिन जो है वो आता है लेकिन पिछला दिन नहीं आता है, टुडे कभी नहीं, टुडे जो है वो आता है लेकिन आप कल देंगे, वो कल देखेंगे, वो कल जो है वो कब आएगा, कल ही आएगा, माना आज जो है वो आज में हम है, लेकिन आज जो है वो आज ही है, वो कल आप होंगे तो भी क्या हो जाएगा, आज जो है वो कल नहीं आएगा, लेकिन कल जो है वो कल कल जो है वो आगे चलता जाता है, लेकिन आज जो है वो कल आएगा नहीं, मतलब आज ही है, आज जो है वो आज ही, टुडे इज टुडे, आज जो है वो आज ही है, वो कल आने वाला नहीं है, इसलिए आज जो है और जितना भी आज मेरे अभी मेरे हाथ में है उसका पूरा पूरा लाभ जो है मुझे लेना है, क्योंकि ये यदि निकल गया तो ये वापस आने वाला नहीं है। इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, एक ऐसी बुढ़िया थी और उस बुढ़िया को जैसे उसके पास यमराज आया हुआ था, उसको लेने के लिए आया था, और जब वो उसके पास आया तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं तो आज नहीं आऊंगी लेकिन कल आऊंगी। तो यमराज कहता है कि देखो आज ही आपका दिन है और आपको आज ही लेकर के जाना है, तो आज ही आप क्या करना, मेरे साथ चलना। तो बुढ़िया कहती नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी लेकिन कल आऊंगी। तो कहते आपकी क्या गारंटी है कि आप मेरे साथ कल आएंगी? तो वो कहती है कि आप, मैं यहाँ पर लिख करके रखती हूँ, तो वो अपने दरवाजे पर लिख करके रखती है कि मैं कल आऊंगी, आप कल आ जाना। क्या लिखती है? मैं कल आऊंगी, आप कल आ जाना। और फिर यमराज निकल जाता है, उसका मृत्यु जो है उस दिन का टल जाता है और दूसरे दिन फिर यमराज आ जाता है उसके सामने और उसको कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। युक्ति है ये, लेकिन वो युक्ति जो है वो उसके लिए बहुत फायदे की हो जाती, जो कि वो कहती है कि मैं आऊंगी लेकिन आपने यहाँ पर लिखा हुआ जो भी है वो पढ़ो। वो क्या लिखा हुआ है आप कब आना? कल आना, आज नहीं, क्योंकि मैं आप कल आना, मैं कल आपके साथ आ जाऊंगी। तो कल को जो है वो उसने किसके लिए यूज किया? मृत्यु को टालने के लिए, अर्थात मृत्यु से तो उसने अपनी छुट्टी जो है वो कर ली। नहीं, ऐसे हम भी जैसे आज का जो दिन है वो तो आज हमें मिला हुआ है तो उसका तो पूरा लाभ लेना है, लेकिन पवा कहते जो कमजोरी है या जो भी कमी है या जो भी हमें नहीं करना है, जिसके अंदर बाबा कहते कोई भी कमी की बात हो, अवगुण की बात हो या और कुछ भी हो, जो नहीं का आलस्य की बात हो, जो पुरुषार्थ के अंदर बार बार हमें तकलीफ देता हो, बार बार हमारे अंदर रुकावट बनता हो, तो उसके लिए हम भी एक बात पक्की करके रखे कि वो कब आए? आज नहीं आए, लेकिन आए कब आए? हाँ, वो कल आ जाए। यदि वो कल आ जाए ऐसे आप उसको भगा देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हाँ, वो कमजोरी जो है वो कमजोरी आएगी नहीं, लेकिन आगे निकल जाएंगी वो भी कमजोरी। मतलब कोई भी अच्छा कार्य जो है वो कहते कभी पोस्टपोन नहीं करो, अच्छा कार्य जो है वो तुरंत करो, और जो कमी का काम हो, जो नहीं करना है समझो, वो बात है, आलस्य की बात है, सुस्ती की बात है या और कोई बात है, उसके लिए हमेशा कहा जाता है कि उसको टालो, उसको पोस्टपोन कर दो, उसको आगे कर दो। तो आगे करते करते वो क्या हो जाएगी? वो निकल जाएंगी, वो दोबारा वापस नहीं आएंगी, लेकिन वो पोस्टपोन ही होती जाएंगी। लेकिन जो करनी है वो करने वाली बात जो है वो क्या हो जाएंगी? आज ही करनी है, अभी ही करनी है और करनी ही है। इस दृढ़ संकल्प के साथ बाबा कहते हैं कि करो। इसलिए बाबा ने पिछले मुरलियों के अंदर बार बार हम सबको ये भी स्मृति दिलाई थी कि बच्चे जो भी आपको करना है उसके लिए एक शब्द आप अंडरलाइन करो और बार बार अपने आप को स्मृति दिलाते रहो। वो शब्द बाबा ने कौन सा बताया था? कौन सा बताया था शब्द? जो सफलता की चाबी है कहते हैं, जो हमारे पुरुषार्थ के अंदर भी हमें बहुत मदद करती या जो हमें बहुत सफलता के शिखर पर ले करके जाती। तो वो बात बाबा ने कहा था अपने अंदर अंडरलाइन करो कि मुझे करना है। तो वो कौन सी बात बाबा ने याद दिलाई थी? जैसे बाबा ने कहा था व्यर्थ को खत्म करो या समय को सफल करो, ऐसे बाबा ने कहा था कि इसको पक्का करो। और वो पक्का करने वाली बात जो है वो बाबा ने कौन सी बात है? किस बात को पक्का करो? कौन सा संकल्प करो? अब घर जाना है, कौन सा संकल्प करो? नहीं, बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने कहा था और बहुत बड़े उसको बाबा ने दोहराया था, इसको पक्का करो। हाँ, जो सबको पक्का करना है, मामे कम याद तो करना ही है, लेकिन जो हमारे जीवन के अंदर आने वाली हर कमजोरी को खत्म कर दे और हमारे अंदर शक्ति भर दे, ऐसा बाबा ने कौन सा दिया था? दादी जी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो शब्द था दृढ़ता, और इस दृढ़ता को सभी अपने साथ रखेंगे तो सफल बन जाएंगे।